ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। स्रोत साधनों का उचित प्रबंधन करके सरकार अधूरी परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करेगी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। शून्य सहनशीलता की नीति के तहत सरकार भ्रष्टाचार नियंत्रण पर कड़ाई के साथ डटी रहेगी, प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने एमाले संसदीय दल के उपनेता चित नारायण आचार्य। कर्णाली प्रदेश सरकार में सहभागी माओवादी केंद्र के चार मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। बांग्लादेश में आरक्षण के विरुद्ध उठे आंदोलन के हिंसक रूप लेते जाने के बाद 1200 नेपाली लौटे स्वदेश। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनावी अभियान छोड़कर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को आगे बढ़ाने का किया ऐलान। हालांकि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी में अभी भी मुकाबला है बाकी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि स्रोत साधनों का उचित प्रबंधन करके अधूरी परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी सरकार की है। आज प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों के साथ प्रश्नोत्तर के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक की उम्र को जनता की सेवा में लगाया है और बाकी समय भी वे जनता की सेवा में समर्पित रहेंगे। उन्होंने सिमलताल दुर्घटना में लापता बसों और यात्रियों की खोज के लिए नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी बल समेत 197 सुरक्षाकर्मियों और भारतीय गोताखोरों के जुटे होने की चर्चा भी की। प्रधानमंत्री ने आर्थिक क्रियाकलाप में आई सुस्तता को संबोधित किए जाने को जरूरी बताते हुए कहा कि मौद्रिक नीति को अतिरिक्त लचीला बनाते हुए देश के व्यावसायिक वातावरण में सुधार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शून्य सहनशीलता की नीति के तहत सरकार भ्रष्टाचार नियंत्रण पर कड़ाई के साथ डटी रहेगी। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने विधायन संबंधी विधेयक 2080 के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। बैठक में कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अजय कुमार चौरसिया द्वारा प्रस्तुत विधायन संबंधी विधेयक 2080 प्रस्ताव को सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा के सांसदों ने मौजूदा मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। सभा की आज की बैठक में सांसदों ने बाढ़ और भूस्खलन लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान गंवाने वाले लोगों को उचित मुआवजा देने की सरकार से मांग की। सांसदों ने वैदेशिक रोजगार के लिए गई महिला कामगारों के भयानक घरेलू हिंसा झेलने को मजबूर होने के जिक्र के साथ उनका तत्काल उद्धार करने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। बैठक में संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडेय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख संरक्षण प्रथम संशोधन विधेयक 2077 के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति हुई है। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक श्रावण 15 अगस्त दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर नेकपा एमाले संसदीय दल के उपनेता चेत नारायण आचार्य नियुक्त हुए हैं। आज दोपहर 56 सांसदों के हस्ताक्षर सहित मुख्यमंत्री पद के लिए आचार्य ने दावा पेश किया था। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचंद ने संविधान की धारा 76 की उपधारा 2 के मुताबिक आचार्य को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया। बता दें कि नवनियुक्त मुख्यमंत्री आचार्य आने वाले बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कर्णाली प्रदेश सरकार में नेकपा माओवादी केंद्र की ओर से शामिल चार मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। आज मुख्यमंत्री यामलाल कड़ेल को मंत्रियों ने इस्तीफा पत्र सौंपा। इस्तीफा देने वालों में सामाजिक विकास मंत्री वीर बहादुर शाही, आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री महेंद्र केसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्री दीर्घ रावत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मंत्री रण सिंह परियार शामिल हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
बाजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते। आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाशमान सिंह ने कहा कि अर्थतंत्र को चलायमान बनाने और उद्योगों को संचालित करने के हिसाब से सरकार आगे बढ़ रही है। नेपालकै प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला स्मृति दिवसकै अवसर पर शहीद स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आज काठमाण्डुमै आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले कहा कि मौजूदा आवश्यकता के मध्यनजर मौजूदा सरकारका गठन किया गया है। सर्लाही में धारदार हथियार से पूर्व राज्यमंत्री रामचंद्र राय की हत्या कर दी गई है। बीती रात सर्लाही की चंद्रनगर गांवपालिका वार्ड नंबर 1 रतनपुर स्थित निवास में राय की हत्या कर दी गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही के डीएसपी तथा सूचना अधिकारी दीपक श्रेष्ठ ने दी। मामले की जांच चल रही है। बांग्लादेश में आरक्षण के विरूद्ध आंदोलन के उग्र रूप लेने के बाद स्वदेश लौटे नेपाली विद्यार्थियों ने आज परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउवा से मुलाकात कर वहां मौजूद नेपाली विद्यार्थियों के सुरक्षित रहने के वातावरण के लिए कूटनीतिक पहल करने का आग्रह किया। मौके पर मंत्री डॉ राणा ने बताया कि परराष्ट्र मंत्रालय में हेल्प डेस्क रखा गया है और ढाका स्थित नेपाली दूतावास को सक्रिय बनाकर वहां के नेपालियों को आवश्यक सहयोग देने के लिए निर्देश किया गया है। परराष्ट्र मंत्रालय के मुताबिक कल रविवार तक बांग्लादेश से 1200 विद्यार्थी स्वदेश लौट चुके हैं। श्रावण महीने के पहले सोमवार हिंदू महिलाओं ने आज व्रत कर पशुपतिनाथ मंदिर लगायत महादेव मंदिरों में पूजा अर्चना की। श्रावण महीना और सोमवार का संबंध भगवान शिव से माना जाता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव का व्रत और पूजा करने की परंपरा है। बाढ़, भूस्खलन एवं अन्य कारणों से देश के 9 सड़क खंड पूरी तरह अवरुद्ध हैं और 159 सड़क खंडों के सिंगल लेन संचालित हुए हैं। सड़क विभाग द्वारा जारी तथ्यांक के अनुसार डुमरे बिसी शहर चामे तानसेन रीडी कोरला पुष्पलाल मध्य पहाड़ी राजमार्ग का बागलुंग और डोटी लगा सड़क खंड पूरी तरह अवरुद्ध हैं। सड़क विभाग के अनुसार विभिन्न स्थानों में भूस्खलन के मलबों को हटाने का काम हो रहा है। विभाग ने रात के समय बाढ़, भूस्खलन जैसे खतरे के कारण यात्रा को असुरक्षित बताते हुए आवाजाही न करने का सुझाव दिया है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अंतर्गत की मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के मुताबिक अगले 24 घंटों में कोशी, बागमती, कंडकी, लुम्बिनी और सुदूर पश्चिम प्रदेश के कुछ स्थानों में और बाकी प्रदेशों के कुछ एक स्थानों में मेघ गर्जन और बिजली गिरने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कोशी, बागमती, लुम्बिनी और सुदूर पश्चिम प्रदेश के एक दो स्थानों में भारी वर्षा की संभावना भी महाशाखा ने जताई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जो बाइडेन अगले साल जनवरी तक अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। इस बीच उम्मीद की जा रही है कि वो इसी सप्ताह देश को संबोधित कर सकते हैं। भले ही जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाने का समर्थन किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे डेमोक्रेटिक पार्टी की संभावित उम्मीदवार हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अभी भी मुकाबला बाकी है। चुनाव के दिन करीब होने के बाद भी पार्टी में नए उम्मीदवार को नामित करने का रास्ता स्पष्ट नहीं है। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन यानी डीएनसी नए उम्मीदवार को चुनने के लिए रूपरेखा तय करेगी। 19 अगस्त से शुरू होने वाले इस कन्वेंशन में पार्टी के प्रतिनिधि डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर चुन सकते हैं। डीएनसी की नियम समिति का कहना है कि अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए बुधवार को उसकी बैठक होगी। सम्मेलन में भाग लेने वाले पार्टी के प्रतिनिधि या डेलीगेट्स आमतौर पर प्राथमिक प्रक्रिया के दौरान चुने गए उम्मीदवारों को अपना वोट देते हैं, लेकिन अब उन्हें किसी अन्य उम्मीदवार को वोट देने की छूट होगी। यदि पार्टी किसी नए उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए एकजुट नहीं होती है तो इसके लिए साल 1968 के बाद पहली बार इसके लिए खुला अधिवेशन हो सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि उनके सामने कई उम्मीदवार हैं तो प्रतिनिधि ये फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे कि वो उनमें से किसे अपना वोट दें। इस बीच जो बाइडेन की उम्मीदवारी छोड़ने के बाद से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के प्रचार ने 24 घंटे में लगभग $5 करोड़ का फंड जुटाया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्रोत साधनों का उचित प्रबंधन करके सरकार अधूरी परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करेगी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन, शून्य सहनशीलता की नीति के तहत सरकार भ्रष्टाचार नियंत्रण पर कड़ाई के साथ डटी रहेगी, प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने एमएलए संसदीय दल के उपनेता चित नारायण आचार्य। खड़ाली प्रदेश सरकार में सहभागी माओवादी केंद्र के 4 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। बांग्लादेश में आरक्षण के विरुद्ध उठे आंदोलन के हिंसक रूप लेते जाने के बाद 1200 नेपाली लौटे स्वदेश। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनावी अभियान छोड़कर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को आगे बढ़ाने का किया ऐलान, हालांकि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी में अभी भी मुकाबला है बाकी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।